ओम शांति। एक अमेरिका का लेखक रिचर्ड नैश 1954 में उसने एक नाटक प्ले लिखा था जिसका नाम था द रेन मेकर, बारिश बनाने वाला। एक गांव है जहां पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा है, और अचानक एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं बारिश लाऊंगा पर मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो तो मैं बारिश लेकर आऊंगा। लोग मानते नहीं है, पर जिस घर में वो रहने आता है उस घर में एक महिला है जो थोड़ा अलग प्रकार के है। हमेशा लोग उसे समझाते रहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसके घर वाले, उसके पिता, उसकी बहन और जो भी घर के लोग हैं, अनकन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, अलग प्रकार की है वो, थोड़ी सी हटके है, दिखने में ठीक नहीं है। लोग उसे समझाते रहते, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुमको ये करो, वो करो, ऐसा करो। तो जैसे ही ये व्यक्ति आता है तो इसके आने से उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है और वो कहता है कि मैं बारिश लाऊंगा पर मुझे पैसे दो। और ये जो कहानी है बड़ी गहरी कहानी है, मैनेजमेंट स्कूल्स में इसे बार बार सुनाई जाती है, पावर ऑफ बिलीविंग। उस पर कहानी में धीरे धीरे बारिश कम महत्वपूर्ण होती जाती है और ये जो कन्या है इसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ते जाता है, उसका नजरिया जीवन को देखने का धीरे धीरे बदलते जाता है। और वो बार बार कहता है मैं बारिश लाऊंगा पर मुझे पैसे चाहिए। वो घर वाले कहते हैं ऐसे कैसे, तुम ठग हो, ठगने आए हो, बारिश के तुम्हारे वश में। वो कहता है वो कुछ नहीं पता मुझे, मैं बारिश लाऊंगा। इसको एक फिल्म में भी बना दिया है। घर के लोग पूछते कौन सी बारिश की बात कर रहे हो तुम बारिश ही लाने वाले हो ना, कौन सी? तो वो कहता है हां मेरे दोस्त, वही बारिश, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। वो लोग पूछते हैं कौन सी बारिश लाओगे तुम? वो कहता है वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं, उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में कन्नी, कन्नड़ में नीर, बांग्ला में जोल कहते हैं, संस्कृत जौल, संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन पय, अमृत पय, अंबू भी कहते हैं, ग्रीक में इसे एक्वा प्योर, अंग्रेजी में इसे वाटर, फ्रेंच में ऑ, और केमिस्ट्री में H2O। ये पानी आंखों से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पर चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। हां कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी यह पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो और मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की आगर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए तो यह बारिश खरीदी है। वो कहता है बहुत, मैं बारिश लाया ना, 5,000 रुपए लूंगा पर। सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश सिर्फ 5,000 रुपए में, इससे कम में दे कोई तो चोर की सजा वो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। और आखिरी में दिखाया है कहानी में वास्तव में बारिश हो जाती है, पर जब बारिश होती है वो बारिश इतने महत्वपूर्ण नहीं होती और उसके वजह से बारिश नहीं होती, बारिश हो जाती है। तो कहता तो है कि मैं बारिश लाऊंगा और बारिश होती भी है, पर दिखाया है वो जो बहन है, वो जो कन्या है, वो जो स्त्री है, उसके विचारों में परिवर्तन होते जाता है, पावर ऑफ बिलीविंग. वो जो आत्मविश्वास खो चुकी थी, बारिश क्या हो जाती है? हो जाती है. तो ये उस लेखक ने, अमेरिकन लेखक ने ये कहानी लिखी थी 1954 में. भारत वालों ने इस पर फिल्म भी बना दी. मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो. तुम्हें धारणा करनी है और करानी है. तो आज बाबा ने कहा, तुम सब कौन हो? बादल हो. क्या करते हो? बरसते हो. कोई कोई जोर से बरसते हैं और कोई कोई सुस्त बादल है, पेट पीठ से लग जाता है, गरीब रह जाते हैं, और कोई कोई घनघोर वर्षा करते हैं. फैमिन, सूखा आ जाता है तो पेट पीठ से लग जाता है. तो जो नहीं बरसते वो गरीब बन जाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे, और जो बरसते हैं वो राजा रानी बनेंगे. कौन सी बारिश? वही बारिश. कौन सी बारिश? सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश. कौन सी बारिश? वही जो बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिसलती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे बढ़ती है, वही बारिश. तो हम सब कौन है? ज्ञान के बादल. बादल सागरों के ऊपर होते हैं, तो बादलों का बाप हुआ कौन? सागर. तुम मीठा पानी खींचते हो. आज की मुरली की शुरुआत. तुम क्या करते हो? मीठा पानी बादल से खींचते हो और जाकर बरसते हो, बरसाते हो, मल्हार सुनाते हो. मल्हार अर्थात मल्हार. तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे. रूहानी मल्हार. मल्हार अर्थात बारिश. राग मल्हार होता है, मेघ मल्हार. तानसेन जब मेघ मल्हार गाते थे तो क्या हो जाता था? बारिश. इतनी संगीत में शक्ति है. मीरा और तानसेन, ये दोनों को दिखाया है मल्हार गाते हुए. बारिश गिर पड़ती थी, वास्तव में गिर सकती है, अगर ज्ञान का संगीत अंदर वास्तव में बज रहा हो. किसी गांव में बिल्कुल बारिश नहीं होती, एकदम सूखा, वो सुनते हैं एक रेन मेकर है जो बारिश लाता है. उस बूढ़े व्यक्ति को लेके आते हैं. वो कहता है, पर मेरी एक शर्त है, 3 दिन तक मुझे एक कमरा दो, ना भोजन करूंगा ना पानी पीऊंगा, बस कमरे में रहूंगा. वो कहते, ठीक है. उसे 3 दिन के लिए कमरा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और 3 दिन के बाद अपने आप बारिश होने लगती है. उससे पूछते, तुमने किया क्या? बारिश हुई कैसे? या तुम्हारी वजह से हुई या ऐसी हुई? उसने कहा, अच्छा उत्तर दिया, मैं बिखरा था, जैसे ही मैंने अपने मन को स्थिर कर दिया, when I am in order, the universe is in order, जब मैं स्थिर हो जाता हूं, अस्त व्यस्त था, ठीक कर देता हूं अपने मन को, तो मेरा मन ठीक होते ही प्रकृति भी ठीक होने लगती है. अपने आप मेरा मन सारी कायनात से जुड़ा हुआ है. तो ये ठीक, तो सब कुछ ठीक होने लगता है. 4-5 प्रश्न है. पहला प्रश्न, सुस्त बादल. चुस्त बादल, जो चुस्त बादल है उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है? ये पहला प्रश्न. किसे कहेंगे चुस्त बादल? दूसरा प्रश्न, क्यों बरसना है? तीसरा प्रश्न, कब बरसना है? चौथा प्रश्न, कहां? प्लेस, वेयर. पांचवा प्रश्न, कैसे? हाउ. इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढेंगे. कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर बड़े आसान हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर लंबे हैं. उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ऐसी कुछ चीजें हम देखेंगे. लगभग 12, और कैसे बरसना है वो महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो है क्यों बरसना है, क्योंकि संसार में क्या पड़ा है, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है। कब बरसना है, कब बरसना है, आज नहीं, नहीं कब, अभी समय, आज नहीं, अभी 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 बरस जाओ, उसके बाद में कहां बरसना है कहां बरसना है, बंजर जमीन पर बरसना है, कलराठी जमीन पर, जो बरसते नहीं उनको सुस्त बादल, जो बरसते नहीं उनको, एक साकार मुरली था, मुरली थी, उसमें कहा था बाबा ने, जो बरसते नहीं उनको मनहूस कंजूस, जो बरसते नहीं उनको, जो पता देगा उसको इनाम दिया जाएगा जो बरसते नहीं उनको क्या कहा जाता है, सुस्त महादेव, ठंडे बादल, जो बरसते नहीं उनको, हाँ, जो बरसते नहीं है, क कुकड़ ज्ञानी नहीं पर दो तो अक्षर बता दिया, अब रहा ही क्या तो आज की मुरली में है, बाबा ने कहा जब बारिश आती है तो क्या छा जाती है, हरियाली छा जाती है, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजुरी की तलवार नहीं बूंदों के बान चलाओ, बिजली की तलवार नहीं चलाओ, क्या चलाओ, बूंदों के बांध, संसार गा रहा है, घिर घिर आए, घिर के आए, कहे ये मन मचल मचल, ना यू चल संभल संभल, गए दिन बदल तू घर से निकल, बरसने वाला है अब अमृत जल, क्या बरसने वाला है, अमृत का जल बरसने वाला है, दुविधा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुनाओ, दुविधा के दिन बीत गए, अब क्या सुनाओ, मल्हार, मल्हार अर्थात बारिश, मेघ मल्हार राग है वो, एक घनन घनन गिर गिर आए बदरा, घन घने घन घोर छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बजूरिया चमके, मन धड़काए बदरवा, रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा, कोयलिया गाएगी बैठी मुंडेर पर, जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे, उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर, प्रेम की बरखा में भीगे भीगे तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण, जाइयो तुम जहां जहां देखियो वहां वहां, यही एक समा की धरती यहां है, पहने सात रंगों की चुनरिया। तो जब बादल आते हैं तो बहुत खुशी होती है, धमक धमक गूंजे पदरा के डंके,
धमक धमक गूंजे
बदरा के डंके,
चमक चमक देखो
बिजुरिया
चमके,
मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा,
मन धड़काए बदरवा, काले मेघा पानी तो बरसाओ,
काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजुरी की तलवार नहीं बूंदों के बान चलाओ,
मेघा छाए बरखा लाए,
गिर गिर आए गिर के आए, कहे ये मन मचल मचल, नयो चल संभल संभल,
गए दिन बदल तू घर से निकल परतने वाला अमृत जल।
सुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुना
पानी का दर्पण
चाहिए तुम जहां जहां
देखियो वहां वहां
यही
एक धरती यहां पहने सात रंगों की चुनरिया घनन घनन गिर गिर आए बदरा
धमक
धमक गूंजे बदरंग
बारिश का आह्वान सारी दुनिया कर रही है क्योंकि सारी दुनिया में इस समय क्या छाया है सूखा अकाल हरियाली की तलाश है बारिश की प्यास है तो आत्माओं को पानी चाहिए और पानी कौन लेकर आया है सस्ता सुंदर टिकाऊ बारिश हमारे पास है तो जो बारिश बरसाने वाले बादल हैं उनमें कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ये ज्ञान कि बरसाना है बादल, बादल को बरसना है, ज्ञान का ज्ञान, किसका ज्ञान, ज्ञान का अर्थात धारणा कि ये काम मुझे करना है, क्योंकि यही तो भूला रहता है। हर व्यक्ति अपने ही पुरुषार्थ में डूब जाता है, उसे ये भूल जाता है कि कुछ और भी करना है, बरसना भी है। तो चुस्त बादल अर्थात जो धारणा करते हैं और कराते हैं, चुस्त बादल अर्थात जो बादल के सागर के पास आते हैं, भरते हैं और फिर जाके बरसते हैं, ये उनके पास ज्ञान है, ज्ञान का भी ज्ञान, ये होना चाहिए चुस्त बादल में, पहली बात। दूसरा शुभ भावना, सभी के प्रति शुभ भावना, तभी तो बरसा सकेंगे, नहीं तो नहीं बरस पाएंगे। शुभ भावना हर एक के लिए। उसके बाद में दातापन का भाव, दाता, दाता की वृत्ति, देना है देना है देना है, तभी ज्ञान दे सकेंगे, नहीं तो कैसे दे सकेंगे। एक मुरली में था, दुनिया में हर व्यक्ति अपने दुख दर्द में डूबा रहता है और तुम हो जो दुनिया को दुख दर्द से उबारने वाले हो ज्ञान देकर। आज का मन मना भव का इंजेक्शन, सारी दुनिया महारोगी पेशेंट है, बाप अविनाशी सर्जन आया हुआ है मन मन अभव का इंजेक्शन देने, पर उसके पास हाथ नहीं है, वो हमारे हाथ से देगा, हम उसके हाथ है जो ये काम करेंगे, हम उसके मुख है जिस मुख से ये ज्ञान निकलेगा। दाता का भाव, उसके बाद में रहम दिल होना चाहिए देने वाला, नहीं तो अपनी बारिश अपने पास लेके बैठा हुआ है, बिल में छुपा हुआ है, देता ही नहीं, देता ही नहीं, देते रहना चाहिए, बरसते रहना चाहिए। घनघोर, कोई कोई घनघोर वर्षा करते और कोई कोई क्या करते हैं आज की मुरली में? बूंदाबांदी करते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा बरसते और फिर लंबा अवकाश ले लेते, बहुत हो गया। रहम दिल होना चाहिए, उसके बाद में सर्विस एटीट्यूड, सर्विस की वृत्ति होनी चाहिए कि मुझे सेवा करनी है। इस भाव को अंदर कूट कूट के भरना है कि मुझे सेवा करनी है। अगला, परमात्मा प्रेम उसमें होना चाहिए। जब तक परमात्मा प्रेम नहीं, ये भाव जागृति नहीं होगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी देना है आत्माओं को। उसके बाद में बड़ी दिल, उदार चित्त। उदार चित्त के लिए तीन चीजें छोड़नी है लास्ट संडे के, लास्ट संडे की मुरली। कौन सी? ईर्ष्या, द्वेष और ईर्ष्या, द्वेष नहीं, ईर्ष्या घृणा, और तीसरा टॉन्ट। नया शब्द बनाती है क्या? क्रिटिसिज्म। ईर्ष्या, खुद परेशान दूसरों को परेशान, घृणा खुद गिरते दूसरों को गिराते, और क्रिटिसिज्म दूसरों को धक्का देके आगे निकल जाते गिरा के। तो बड़ी दिल होनी चाहिए, विशाल दिल होनी चाहिए। उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। द वर्ल्ड वन, वर्ल्ड वन फैमिली, ये भाव सब एक ही है, पूरा परिवार। सारी मुरलियों में आता है, बाप किसको देखते हैं? देश विदेश के बच्चों को देखते हैं, सबको देखता है, एक साथ देखता है। एक एक बच्चे के आगे बाप है। अभी अभी कल सुबह की अव्यक्तवाणी, परसों सुबह की अव्यक्तवाणी, एक एक बच्चे के आगे बाप है। चाहे बाप के आगे या बच्चे के आगे, जो भी कहो। तो क्या चाहिए? बड़ी दिल चाहिए, विशाल दिल। तब तक सेवा नहीं कर सकते। सर्विस की वृत्ति चाहिए, तब तक सेवा नहीं कर सकते। प्रभु प्रेम चाहिए, तब तक सेवा नहीं कर सकते। रहम दिल चाहिए, तब तक सेवा नहीं कर सकते। महादानी का भाव चाहिए, दाना, दानी, देना है, देना है। जो हमारे पास अंदर समाया हुआ है वो हमको देना है। वो देने की विधि कुछ भी हो सकती है, या मुख से, वाणी से, या तो लिख कर। जो हम लिखेंगे अपने अनुभव, जो उसको पढ़ेगा कितनी प्रेरणा आएगी उसको। कल हम एक अनुभव पढ़ रहे थे गुवाहाटी के शीला बहन जी का। उन्होंने लिखा है कि एक रात पूरी प्लेटफॉर्म पे गुजारी थी, घर से विरोध, वो सब जो था संघर्ष का जब समय था। बहुत प्रेरणादायी चीजें हैं ऐसी बहुतों के जीवन में। एक एक का अगर हम जीवन पढ़े तो उसमें ऐसी ऐसी बातें हमको पता चलेगी जो उन्होंने अपने अनुभवों में लिखी है। बाबा ने ऊपर बुलाया और ऊपर श्रृंगार किया। पैरों में क्या पहनते हो, पहनाते हैं? पायल, पायल या और कुछ है उसमें? कहा कि घुंघरू, या ये पैर ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे जहां विकर्म है, ये हाथ केवल सत्कर्म करेंगे। हाथों का कुछ पहनाया, कुछ ताज पहनाया, सेवा की जिम्मेदारी, सूक्ष्म वतन में श्रृंगार किया। तो ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव है, वो भी तो बरसना ही है, चाहे लिख के बरसो या मुख से बरसो। तो उसके बाद अगला, आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। चुस्त बादल अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। देहवान में आके समझाएंगे तो असर नहीं होगा। उसके बाद में परमात्मा याद, गॉड को सोल कॉन्शियसनेस। अगला है गॉड कॉन्शियसनेस, उसकी याद जब है तब सुना सकेंगे, नहीं तो नहीं सुना सकेंगे। उसके बाद में संपूर्ण प्योरिटी। बिना प्योरिटी के ज्ञान समझा सकते हैं क्या? नहीं। उसके बाद में वैराग्य। क्वालिफिकेशन क्या है बादलों में? वैराग होना चाहिए, तदक्ता वैराग। वैराग कम तो संसार की आसक्ति ज्यादा, संसार की आसक्ति ज्यादा तो संसार की याद, और संसार की याद तो संसार की इच्छा है। फिर ज्ञान कहां से सुनाएंगे किसको? कोई बहन जी कहेंगे सेवा करो तो हम बहाने बनाएंगे, ये काम है वो काम है। इसको कोर्स कराओ उसको कोर्स कराओ, खुद ही अंदर धारणा नहीं तो कोर्स कराने की भी इच्छा नहीं होती, बोर लगता है, क्या समझाए, खुद ही तो हलचल में है, खुद ही अशांत है और दूसरों को समझाए शांति का मार्ग, खुद ही देहभान में और दूसरों को समझाए तुम आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, परमात्मा कहां है वही हमारा ही खो गया है, दिखाई नहीं देता है, इतनी दूरी हो गई है उसकी और हमें कि अभी वो अर्थात खाली थियरी। तो समझाने की इच्छा नहीं होती, बरसने की इच्छा ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि वैराग कम है, उसके बाद में अगला एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन, जब तक एकाग्रता नहीं बुद्धि भटक रही है कैसे समझाएंगे ज्ञान को। तो चुस्त बादल अर्थात जिसमें प्यूरिटी है, जिसमें वैराग्य है, जिसमें एकाग्रता है, प्यूरिटी अर्थात जिसमें ज्ञान का ज्ञान है, जिसमें रहम दिल है, जो सर्विस का भाव है, जिसमें दातापन का भाव है, जिसमें बड़ी दिल है, तो ये सारी चीजें क्वालिफिकेशंस में आती है। चुस्त बादल जिसको बरसना है, जिसको बरसाना। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अब अगला प्रश्न जिसकी चर्चा हम करेंगे, और वो प्रश्न है ज्ञान सुनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ज्ञान सुनाते समय क्या क्या हमें याद हो, ज्ञान सुनाते समय हमारी स्थिति कैसी हो। तो उसके 12 बातें हैं, चाहे ये ज्ञान कोर्स करवा रहे, चाहे ग्रुप को समझा रहे, चाहे घुमा रहे हैं, चाहे यज्ञ का परिचय दे रहे, चाहे किसी कोई क्लास करा रहा है, कोई वर्कशॉप करा रहा है, कोई सेमिनार करा रहा है, या कोई ज्ञान योग की तीव्र पुरुषार्थ की क्लास, कुछ भी, वक्ता स्पीकर को किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो चुस्त बादल है उसकी क्वालिफिकेशन देखी हमने, और अभी बरसाते समय किस तरह बरसना है। तो जो बरसने वाला है ऐसी 12 बातें होनी चाहिए। सबसे पहला सोल कॉन्शियसनेस, पहला एस वो आत्माभिमानी स्थिति में रहे, खुद ही आत्माभिमानी नहीं है, देहभान में है तो जौहर नहीं भरेगा। तो बरसने के पहले सोल कॉन्शियस, इसलिए जब भी कोर्स कराने जाए सेंटरों पर, क्लास कराने जाए कहीं बाहर, ज्ञान समझाने जाए, चाहे ओम शांति भवन में गेस्ट आए हैं, अपने आप को थोड़ा सा सवार लेना है उनको समझाने से, दिख रहे वो आ रहे उधर से, सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं, हम ऊपर है ओम शांति भवन में, तुरंत कुछ समय अपने आप को देखकर क्या कर देना है, आत्माभिमानी बन जाना है कि मैं आत्मा हूं और अब मुझे सेवा करनी है इन आत्माओं की, छोटा सा भी संकल्प पावर भर देगा। दूसरा स्वरूप बनकर समझाना है, जो समझा रहे हैं उसके हम स्वरूप हो, समझा कुछ रहे और हमारा स्वरूप कुछ और है तो तीर नहीं लगेगा निशाने पर, स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर समझाए जो भी समझाना है, अगर यज्ञ का परिचय देना है, स्थान का परिचय देना है तो हमारे अंदर खुद नशा हो कि हम किस स्थान पर है, ये मधुबन है, ब्रह्मा की कर्मभूमि है, एक दो नाम मधुबन के बुद्धि में लाने हैं, मधुर भूमि है, मनोरंजन भूमि है, कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, परिवर्तन भूमि है, परमात्मा अवतरण भूमि है, तपस्या धाम है, चैतन्य दिलवाड़ा है, ढेर सारे नाम है, वो सारे फटाफट बुद्धि में लाने हैं क्योंकि हमें मधुबन के ऊपर समझाना है, पांडव भवन का समझाना है पांडव भवन का परिचय देना है, चार धाम का परिचय देना है। परिचय देने से पहले खुद मन के मन में चार धाम की यात्रा करके आ जाए और फिर समझाए। तो यह है स्वरूप बनना और फिर परिचय देना। कोई भी भाषण दे रहे हो या वन टू वन चालू है, एक सामने व्यक्ति बैठा है उसका कोर्स कराना है, या एक ही व्यक्ति आया है, या कोई वीआईपी गेस्ट आए हैं और हमसे कहे कि थोड़ा सा बता दो, तुरंत स्वरूप में स्थित होना, तुरंत आत्माभिमानी होना, और तीसरा सोल कॉन्शियस विजन अर्थात आत्मिक दृष्टि। अंग्रेजी में कहते हैं सोल कॉन्शियस विजन। किसको समझा रहा हूं? वीआईपी को, पॉलिटिशियन को, किसको समझा रहा हूं? ये बड़ा बिजनेसमैन है, सारी बुद्धि उसकी बिजनेसमैन होने पर ही लगी रहती है। ये अगर समझ जाए तो हमारा बहुत फायदा हो जाए, इस पे लगी रहती है, इसको पकड़ लो बस। ये नहीं, कौन आया है सम्मुख? आत्माएं हैं। मैं आत्माओं को समझा रहा हूं। आत्माभिमानी स्थिति। चौथा सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं परमात्मा याद। एक है गॉड सोल कॉन्शियसनेस, दूसरा है गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस अर्थात ईश्वरीय याद। तुरंत एक सेकंड में आत्मा स्थित हो गए, सामने आत्माएं हैं, स्वरूप में स्थित हो गए और बाबा की याद। जो ज्ञान हम सुना रहे, सीधा ज्ञान सूर्य से मैं जुड़ गया हूं। अब जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो मेरा नहीं है, ऊपर से बह रहा है, क्योंकि मैं आत्मा कहां जुड़ गई हूं? ऊपर। ये सागर है, ये बादल है, बादल का कंटिन्यूअस सागर से सप्लाई हो रहा है। ऊपर से सागर, ऊपर टंकी है, ये बादल है, तो ऊपर से सप्लाई आ रहा है, या तो नीचे से, जैसे आज की मुरली में कहा नीचे सागर है, ऊपर तुम बादल हो। तो सोचना नीचे से आ रहा है, मीठा जल तुम खींचते हो आज की मुरली में, मीठा पानी तुम बादल सागर से खींचते हो, तुम सागर की संतान हो। तो मैं क्लाउड, डिवाइन क्लाउड हूं। कौन हूं? दैवी बादल, दैवी मेघ, द डिवाइन क्लाउड। ये चौथी बात। उसके बाद में अगला सत्यता। बाबा ने एक मुरली चली थी, सत्यता की शक्ति और शीतलता की शक्ति। हाँ याद है, शीतलता की शक्ति मुरली में था, आज ज्ञान सूर्य बाप और ज्ञान चंद्रमा वो। तो तुम्हें क्या करना है सत्यता को सिद्ध करने के लिए? पहले शीतलता, पहले उनको शीतल करो, फिर सत्यता की शक्ति धारण करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शीतलता पर मुरली थी ना, शीतलता की शक्ति मुरली चली थी कुछ समय पहले। तो सत्यता हो, हम जो सुना रहे ऐसे ही नहीं इधर उधर की फालतू बातें या व्यर्थ की बातें, और जो उदाहरण दे वो भी सत्य उदाहरण हो, ठोस उदाहरण हो जिसका प्रमाण हो। जैसे हमने कईयों को सुना है ये कहते हुए कि हाँ 5000 साल की बात तो कई धर्मों में आती है, ये धर्म ने भी कहा है 5000 साल का चक्र होता है, किसी धर्म ने नहीं कहा है। ऐसे ही अपने पॉइंट सिद्ध करने के लिए इधर उधर के गलत उदाहरण नहीं देने। किसी धर्म ने 5000 साल का ये फिगर दिया नहीं है, जो भी है, पर इस तरह का फिगर किसी धर्म की किसी भी किताब में नहीं है। यहां तक कि ये जो हम मुरलियों में ऐसा आया है कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले स्वर्ग था, ये बाइबल में नहीं लिखा है। बाबा ने भी ऐसा नहीं कहा है, बाबा ने हमेशा कहा है ऐसे कहते हैं, पर लोग कैसे समझाते हैं बीकेस बाइबल में लिखा है 3000 साल पहले। अगर उसने बाइबल पढ़ी होगी ना तो पूछेगा बताओ कहां है, फिर क्लीन बोल्ड। कोई भी धर्म की बातें अगर बोलनी है तो वो धर्म का लिटरेचर हमारा पढ़ा हुआ हो, और नहीं तो बोलो ही नहीं, फिर उसको छेड़छाड़ नहीं करना धर्म की किताबों के साथ, उपनिषद के साथ, वेदों के साथ, धार्मिक किताबों के साथ, कुरान के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। नहीं तो हम कहेंगे कुरान में तो लिखा है, बस फिर दंगे हो जाएंगे। यहां तो इतना सेंसिटिव इश्यू है, पंजाब में गुरु गोविंद साहब का, गुरु गोविंद सिंह जी के कपड़े एक बार किसी ने पहन लिए थे, दंगे हो गए। कितना बड़ा क्या क्या हो गया था, बवाल हो गया इतना बड़ा। पहन ली बस, राइट्स हो गए। तो धर्म जो ऐसी चीज है अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए। हाँ गीता को छेड़ लो, ज्यादा कुछ नहीं कहेगा कोई, पर गीता ठीक है। मन मना भाव ले लिया वहां से, कितने शब्द ले लिए, पर ये मत कहना अच्छा वो वहां लिखा है, वो आ जाएंगे लोग। हाँ उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी इसमें इसलिए ये सब शब्द नहीं कहना है कि 5000, अरे इस धर्म में भी लिखा हुआ है, उस धर्म में भी लिखा हुआ है, हर धर्म ऐसा मान। हाँ यहां तक ठीक है, हर धर्म परमात्मा को मानता है, ज्योतिर्स्वरूप को मानता है, ये सब ठीक है, पर ये नहीं कहना है कि उस धर्म में भी भगवान को पिता मानते। इस्लाम में पिता नहीं है, वो मालिक है। तो सत्यता होनी चाहिए। अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए झूठे उदाहरण नहीं देने हैं। अगर देने हैं तो वो सत्य हो, फिर उसको पॉइंट टू पॉइंट हो, वो कौन सी किताब में किस पेज पे किस चैप्टर में किस अध्याय में लिखा हुआ है, वो सारा सामने रखो, नहीं तो छोड़ दो, हाथ ही नहीं लगाओ, बोलना ही नहीं है। करना कई धर्मों में ऐसी मान्यता, ऐसा बोल देना बस, ऐसा मानते हैं, ऐसे हमने सुना हुआ है बस। एग्जैक्ट पेज और ये सब नहीं करना है, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये 5000 साल का जो सब्जेक्ट है इसको तो थोड़ा दूर ही छोड़ देना, ज्यादा उससे छेड़छाड़ करना ही नहीं। ये रिपीट होता है ड्रामा, नहीं तो कहेंगे हर धर्म में ऐसी मान्यता है कि सारा रिपीट होता है, बस गए काम से। सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर बाद में फिर प्रश्न खड़े करेंगे कि ये लोग तो बस अपने हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, इनको पता है। वो अगर पता है और हमने देखा है अपनी आंखों से तो बताओ, पर जो देख लिखा हुआ भी है उसमें भी कितनी सत्यता है, वो कितना प्रामाणिक है, कब लिखा गया, किसने लिखा, किसको क्या पता। तो सुनाते समय क्या हो, सत्यता हो। उसके बाद में स्पीच, हमारा स्पीच कैसे हो, स्लो हो, मीठा हो, स्वीट हो, नहीं तो कितना भी अच्छा ज्ञान और कर्कश वाणी में अगर सुनाया जाए, अहंकार युक्त वाणी में सुनाया जाए, अरे मूर्खो आओ मैं तुमको परमात्मा का परिचय देता हूं, कहां थे अज्ञान में, किसकी भक्ति करते हो, हनुमान की, उस बंदर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आओ इधर मैं तुम्हें परमात्मा का परिचय देता हूं। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या, किसकी पूजा कर रहे हो, गणपति की, ऐसा कोई एलिफेंट गॉड होता है क्या, कभी मंकी गॉड एंड एलिफेंट गॉड की पूजा करने वाले अज्ञानी हो, मैं तुम्हारा अज्ञान दूर करने आया हूं, आओ सुनो, भगवान स्वयं धरती पर आ चुका हूं, किसको भगवान मानते हो, हटाओ ये सब तुम्हारे डेमी गॉड्स, झूठे भगवान, ये नया भगवान हमारा इधर है, तो वो अपना भगवान लेके आएंगे, ये तुम्हारा है ये हमारा है। जैसे एक डॉक्टर साहब आए थे नीचे अव्यक्त बाबा से कुछ सालों पहले, जब बाबा आते थे मिले, उनको मिलाया गया तो बाद में अनुभव सुनाया, हाँ सेम सेम, बस हमारे गुरु का भी सेम अनुभव ऐसा ही है, हम भी उनके सामने जाते हैं बस ऐसा ही फील होता है, सेम जैसा कल अनुभव हुआ ना हमारे गुरु के साथ भी वैसा ही फील होता है। अब क्या बोलेंगे, लाने वाले ने सोचा होगा इसका बाबा के सामने जाएगा तो कुछ बिजली कड़केगी, कुछ हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, और एकदम उसे साक्षात्कार जैसा हो जाएगा और वो एकदम झुक जाएगा कि आप ही भगवान हो, पर उसको तो उल्टा ही हो गया। तो जो भी हम बोले वो सत्य हो, जो भी हम बोले हमारी भाषा वाणी मृदु माधुर्य हो, उसमें मधुरिमा हो। उसके बाद में ज्ञान सुनाते समय शो कंपैशन एंड रिस्पेक्ट, ये दो चीजें, रहम और सम्मान। ऐसा नहीं कि उनके पास, हम भी तो बाबा ने कहा है ना, तुम भी क्या थे पहले, उल्टे लटके हुए थे, ज्ञान क्या मिल गया और बस अहंकार अहंकारी बन गए, पंसारी चले, मगरूरी। तीन चार हफ्ते पहले एक मुरली थी, ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है किसी किसी को, सोचते हैं बस हम जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो जब भी ज्ञान सुनाओ, जब भी कोर्स कराओ, जब भी किसी को ज्ञान समझाओ, ये नहीं समझना है कि ये क्या समझना है, ये रिस्पेक्ट हो उनके लिए, सम्मान, और अंदर से रहम की भावना हो उनके लिए कि इनका मुझे कल्याण करना है। इस भाव से ज्ञान सुनाया जाए, अहंकार युक्त वाणी से नहीं, अंदर से ये फीलिंग हो। उसके बाद में सर्विस इंस्ट्रूमेंट। मैं क्या हूं? सर्विस का इंस्ट्रूमेंट हूं, अर्थात मैं निमित्त हूं। ऐसा नहीं कि बस मैं ही सुना सकता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो कोई और सुना देगा। लोगों को रहता है ना, ये मेरा स्टूडेंट है, इसका कोर्स मैंने कराया था अभी वो आगे जा रहा है बहुत, तो हमेशा दूसरों को बताएं ये जो है ना कोर्स, उसको पूछो कोर्स किसने कराया था, उसकी टीचर कौन है वो आगे जा रहा है, कोर्स आखिर कराया किसने था, इसको हमारा स्टूडेंट है ये हमारे सेंटर पे हुआ था, हमने कराया था, आखिर निकला कहां से है पूछो उसको उसे तो याद भी नहीं होगा। तो चलो ठीक है, बट ये भाव रहे कि क्या है, हम इंस्ट्रूमेंट है, सर्विस इंस्ट्रूमेंट, ये भूलना नहीं है। सेवा करते समय भी, ज्ञान सुनाते समय, बरसते समय, बरसना तो है पर ये नहीं कि हम ही बरस सकते हैं, बस हमसे जैसा कोई बरस ही नहीं, हमसे ज्यादा। तो इंस्ट्रूमेंट इसको भूलना ही नहीं। उसके बाद में सरेंडर, बाबा को सरेंडर कर देना है। कई बार ऐसे लोग सामने आके बैठ जाएंगे जो हमसे बुद्धिक क्षमता जिनकी बहुत ज्यादा हो, हम कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़ाई स्कूल पांचवी में छोड़ दी और अभी आईएएस ऑफिसर और बड़े बड़े कमिश्नर आके हुए और हमको बताया गया ज्ञान सुनाओ, पहले तो हम सोचेंगे उनका क्वालिफिकेशन देख के, अरे बाप रे ये तो मेरे से नहीं होगा, यहां तुम अपना ज्ञान थोड़ी सुना रहे हो, तुम निमित्त हो, समर्पित कर दो अपने आप को बाबा के सामने। तो बाबा फिर तुम्हारे द्वारा ज्ञान सुनाएगा। बाबा ने कहा है ना, कई बार मैं क्या करता हूं, प्रवेश कर जाता हूं, वो स्वामी योगानंद की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत, उसमें उन्होंने लिखा पहली बार विदेश जा रहे थे, जहाज में बैठे हुए थे, उनको अंग्रेजी तो आती ही नहीं थी और अचानक अंग्रेजी फूट पड़ी और भाषण देने लगे। उन्होंने कहा ये पता नहीं कैसे हुई है, शायद मेरे गुरु का ही प्रताप है, नहीं तो मेरी तो ये संभावना ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, ये अचानक हुआ है। तो कई बार जैसा भक्ति में दिखाया, यहां पर भी कई बार हमारे मुख से वो शब्द निकल जाते हैं आज की मुरली में, किस पॉइंट से किसको फायदा है, किस पॉइंट से किसको तीर लग जाएगा, ये दो बातें आज की मुरली में हम जो सुनाएंगे उससे पता नहीं किसको फायदा हो जाएगा, हमने तो ऐसे ही सुना दी, हमारा रूटीन ही था पर पता नहीं उसको एकदम तीर ही लग गया, तो अचानक शायद हमको भी टच हो जाता है, सामने वाले को पता नहीं कौन सुन रहा है क्या कर रहा है पर टच हो जाता है। एक जगह हम गए थे तो वहां पर बोलते बोलते ऐसे ही बोल दिया था कि कई लोग तो ऐसे चार चार घंटा तो बस ट्रैवलिंग करते रहते और फिर कहते पुरुषार्थ कैसे करूं, पुरुषार्थ कैसे करूं। तो एक बहन आते समय स्टेशन पर मिली, स्टेशन पर ही अभी, तो उसने कहा मेरा रोज दो घंटा आना जाने का ट्रैवलिंग है और कितने दिनों से सोच रही थी क्या करूं, रोज ट्रेन से जाना ट्रेन से आना। उसने कहा था जैसे उस दिन वो पॉइंट सुनी ऐसा लगा कि बस ये मेरे लिए थी और अब मुझे कुछ करना है, या तो ट्रांसफर लेनी है, प्रमोशन नहीं चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है। दो घंटा ट्रेन से स्टेशन जाओ, स्टेशन का वायुमंडल, ट्रेन में बैठो, ट्रेन का वायुमंडल, फिर आते समय वापस स्टेशन जाओ, वापस ट्रेन, सारी जीवन इसमें गुजर रहा है और बाबा की मुरलियां चलती है समय, तो फिर टेंशन आ जाता है। तो क्या होना चाहिए? सरेंडर। ज्ञान सुनाते समय क्या हो जाओ? सरेंडर, समर्पण हो जाए। और उसके बाद में हमारे पास संपूर्ण ज्ञान हो, आधा ज्ञान नहीं। एक तो बताया सत्य था, जिस चीज पर भाषण देना है जिस चीज पर बोलना है वो पूरी स्टडी की हुई हो। ऐसा नहीं कि बस गए बिना तैयारी के और कुछ भी बोल दिया, हमारा भी टाइम वेस्ट, दूसरों का भी टाइम वेस्ट। कोई भी भाषण बिना तैयारी के नहीं हो, कोई भी भाषण हो, कोर्स भी कराना है, हजार बार कोर्स करा चुके हैं, फिर भी फिर से तैयारी हो कि मुझे आज इस पर समझाना है, कुछ समय बैठकर अपना भाषण प्लान करना है, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है, ऐसे जाके कुछ भी बोल दें। क्योंकि ब्राह्मणों के पास तो माल इतना है, कुछ भी बोल दें तो लोगों को पता नहीं चलता है, पर हमारी अपनी संतुष्टता नहीं होगी, हमने तो बोल दिया कुछ भी, इधर के पॉइंट उधर कुछ भी इधर उधर जोड़ दिया। प्रिपरेशन हो, प्रॉपर अच्छी प्रिपरेशन हो, तैयारी हो, पक्की तैयारी हो। देखा नहीं यहां पर कैसी अच्छी तैयारी करके आते, पूरी नोटबुक, पॉइंट्स, दस दस पेज, हाँ पक्की तैयारी हो, तो वैसी तैयारी चाहिए, अच्छी तैयारी हो, उसके बाद ही बोलना, नहीं तो हम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और सुनने वालों का भी, अगर हम बिना तैयारी के जाते कहीं तो। हाँ, पढ़ के कुछ भी तैयारी होनी चाहिए। आपने देखा बड़े बड़े स्पीकर्स जो है, जिनको आवश्यकता नहीं है वास्तव में, पर फिर भी वो भी क्या करते हैं, नीचे पढ़ के बोलते हैं। बड़े बड़े नेता क्या वो बोल नहीं सकते? इतने 50 साल का अनुभव उनके पास है, बड़े बड़े फिल्म स्टार इतना बोल सकते, फिर भी कई बार पूरा स्पीच उनका रेडी होता है। क्यों? क्योंकि वो भटकना नहीं चाहते कहीं पर टॉपिक से, बस उसमें फोकस रहना चाहते। अच्छे अच्छे एक्टर्स विदेश में जाते हैं, भाषण करना होता है स्कूल यूनिवर्सिटीज में, पूरा 4 पेज का भाषण लिखा होता है, पर भले थोड़ा थोड़ा देखते हैं, पर देखते जरूर है नीचे, तो भाषण तैयार होता है। ऐसे तो बहुत कम वक्त है नरेंद्र मोदी जैसे, जिनको कोई कागज की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कैटेगरी बहुत कम है, पर मैक्सिमम क्या करेंगे, चुटकी लिखा हुआ। तो क्या हो, संपूर्ण ज्ञान हो हमारे पास उस विषय का ज्ञान। लास्ट टू पॉइंट्स, भाषण, ये एक्चुअली पहले आना चाहिए था, भाषण सुना से पहले साइलेंस की आवश्यकता है, थोड़ा देर साइलेंस में चला जाए। जब तक साइलेंस नहीं है अंदर, बाहर साइलेंस नहीं आएगा। और दूसरा, एकांत, सॉलिट्यूड में जाके चिंतन करना है उस विषय के ऊपर, बिना चिंतन किए बोलना नहीं। अच्छा चिंतन हुआ हो, एक तो बताया तैयारी, तैयारी में लिखित भी हो, मटेरियल कलेक्ट करना, रॉ मटेरियल, जैसे होली पर बोलना है तो होली की सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, संसार में होली किस तरह से मनाते हैं, लठमार होली क्या होती है, से लेके सब कुछ सब कुछ। दिवाली है तो दिवाली के 5 दिन संसार में क्या क्या होते हैं उसका पूरा ज्ञान। ऐसे ही सुनाना चालू कर दिया, आत्मा की ज्योति आपको जगानी है अभी दिवाली, बस हो गया काम पूरा, ऐसा नहीं। अगर विषय पर बोलना है, उस विषय की खाक छाननी है, एक एक बात उसकी पता होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, तो तैयारी लगेगी। और एकांत चाहिए और साइलेंस, साइलेंस में जाना है और एकांत में चिंतन, तो ऐसी 12 चीजें हैं। तो बरसने वाले बादलों को तैयारी करके जाना है, नहीं तो ऐसे ही नहीं बरसना है, नहीं तो हम दूसरों का टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि हरियाली लानी है, आई है रात मतवाली बिछाने हरियाली, ये अपने संग है लाई है सावन को, ये बिजुरी, बिजुरी अर्थात बिजली की पायल, ये बादल का आंचल, सजाने लाई है धरती की दुल्हन को, डाली डाली पहनेगी फूलों के कंगन, सुख अब बरसेगा आंगन आंगन, खिलेगी अब कली कली, हंसेगी अब गली गली, हवा जो चली जो रुत लगी भली, जला दे वो तन मन को वो धूप डली, घनन घनन घनन, क्या घनन घनन, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजुरी की तलवार नहीं बूंदों के बांध सुनाओ। तो ऐसे हमको बरसने वाले बादल बनना है और रूहानी मल्हार करना है। ओम शांति। घन घन घोर कार
छाए बदरा
धमक धमक गूंजे बदरा ढंगे चमक चमक देखो बिजुरी है चमके
मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा
मन धड़काए बदरवा
काले मेघा पानी तो बरसाओ बिजुरी की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ मेघा छाए बरखा लाए
गिर गिर आए गिर के आए
दिन बदल तू घर से निकल बरसने वाला अब अमृत जल
सुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुनाओ
Yeah. रंग के चमक चमक देखो
घन 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 घन